पृष्ठ संख्या 34, अध्याय 3, राग खंबावती। वर्तमान समय में राग खंबावती का प्रचलित स्वरूप चाहे प्राचीन भले ही न हो, किंतु यह सत्य है कि इस राग का यह नाम प्राचीन अवश्य है। समय के अनुसार जिस प्रकार एक ही राग के स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार देश काल के अनुसार एक ही राग स्वरूप के भिन्न भिन्न स्थल पर अलग अलग नाम सुनाई पड़ते हैं। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृति की गति चंचल तथा परिवर्तनशील है। यही कारण है कि एक ही नाम के अनेक स्वरूप व अनेक स्वरूप के एक ही नाम दृष्टिगोचर होते हैं। जिस भांति ईश्वर के एक ही नाम के अनेक स्वरूप हैं तथा एक ही स्वरूप के विविध नाम हैं, उसी प्रकार ईश्वर प्रदत्त इस प्रकृति का खेल है, जो कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर की तरह समयानुसार परिवर्तित होता रहता है और सृष्टि को नवीनता प्रदान करता रहता है। संगीत में भी राग संबंधी नाम तथा स्वरूप के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। प्रचलित राग खंबावती खमास थाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों निषाद आरोह में शुद्ध तथा अवरोह में कोमल तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका आरोह वक्र संपूर्ण है तथा अवरोह में ऋषभ वर्जित होने के कारण इसकी जाति संपूर्ण षाडव है। कुछ विद्वान अवरोह में भी अल्प ऋषभ ग्रहण करके इसकी जाति वक्र संपूर्ण मानते हैं। इस राग के वादी संवादी स्वरों के विषय में मतभेद है। कुछ लोग षड्जवादी मध्यम संवादी मानते हैं व कुछ लोग मध्यमवादी व षड्ज संवादी मानते हैं, किंतु इसमें धैवतवादी व गंधार संवादी मानने के पक्ष में अधिकांश लोग हैं। इसका गायन समय मध्य रात्रि है। खंबावती के संप्रकृत राग विशेष रूप से खमाज, झिंझोटी तथा मांड हैं। इस राग में न्यास षड्ज, गंधार, पंचम व धैवत स्वरों पर किया जाता है। ध तार सा प कोमलनी, ध म प ग तथा ग म सा, यह स्वर संगतियां खंबावती गाते समय बार बार सामने आती हैं। विशेषकर म से मिण लिए हुए सा की स्वर संगति, जिसके द्वारा इस राग को अन्य संप्रकृत रागों से अलग पहचाना जाता है। पृष्ठ संख्या 35। खंबावती के संबंध में यह कहा जाता है कि इस राग की रचना खमाज के स्वरूप को ही तोड़ मरोड़ कर की गई है, परंतु राग के स्वरूप पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि खमाज, झिंझोटी व मांड इन तीन रागों के मिश्रण से खंबावती की रचना हुई है। राग का मुख्य स्वरूप इस प्रकार है: सा रेमा प ध कोमलनी ध कोमलनी प ध तार सा कोमलनी ध प ध म ग व तार सा कोमलनी ध प ध म प ग के आगे राग का मुख्य स्वर समुदाय ग म से मिले हुए सा जोड़कर खंबावती का स्वरूप पूर्ण किया जाता है। उपरोक्त स्वर समुदायों में सारे म प ध कोमल नी ध कोमल नी प ध तार सा में झिंझोटी, तार सा कोमल नी ध प ध म ग में खमाज तथा प ध म प ग म में मांड, इस प्रकार इन तीनों रागों की स्पष्ट झलक आती है। केवल ग म सा स्वर संगति खंबावती की निजी विशेषता है। खंबावती गाते बजाते समय पूरे राग स्वरूप में मुख्यतः झिंझोटी काम करता रहता है। आरोह में तो झिंझोटी ही है, यथा सारे म प म प ध कोमल नी ध कोमल नी प ध तार सा। इसी के आगे अवरोह में तार सा कोमल नी ध म ग व तार सा कोमल नी ध प ध म ग यह खमाश का टुकड़ा या मध्य सप्तक में प ध म प ग म मांड के इस स्वर समूह को मिलाते रहते हैं। प्रस्तुत राग में झिंझोटी तथा खमाज का तो स्पष्ट प्रभाव दिखता ही है, किंतु मांड का भी प्रभाव कम नहीं है। मांड का निजी स्वरूप इस प्रकार है, सारे म प ध तार सा नी ध नी प ध म प ग म रे रे कड़युक्त ग सा। मांड के इस स्वर समूह में निषाद कोमल कर देने से तथा अवरोह के अंत में ऋषभ हटा देने से खंबावती राग का पूर्ण स्वरूप सामने आ जाएगा। इसलिए खंबावती राग के अध्ययन के पूर्व मांड राग का पूर्व ज्ञान भी आवश्यक है। मिश्र रागों के अध्ययन के लिए यह परम आवश्यक है कि पहले जो राग मिश्रित किए गए हैं उनका पूर्ण रूप से मनन व चिंतन किया जाए, अन्यथा मिश्र व संकीर्ण रागों का वास्तविक ज्ञान कठिन ही नहीं असंभव है। उदाहरणार्थ खंबावती राग को ही गाने के लिए झिंझोटी खमाज व मांड राग का अध्ययन परमावश्यक है। यदि गायक को इन तीनों रागों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह खंबावती के संपूर्ण नियमों को नहीं निभा सकेगा। हाँ, राग को एक धुन समझकर उसके आसपास घूमकर उस धुन को राग रूप देने का असफल प्रयास अवश्य करेगा। प्रस्तुत राग के आरोह में गंधार व निषाद का अल्पत्व, झिंझोटी, कोमल निषाद के अतिरिक्त ध म ग की संगति खमाज तथा राग में जो वक्रता है वह मांड इन तीन रागों की ओर इंगित करती है। इन तीन रागों के विभिन्न लक्षण मिलाकर ही खंबावती राग की उत्पत्ति होती है। पृष्ठ संख्या 36। प्रचार में इस राग को गाते समय उत्तरांग में आलाप के बीच बीच तथा अंतरे की उठान में मपनी तार सा की चलन आम तौर से सुनाई देती है। यह स्वर संगति यदि राग में न रहे तो राग हानि नहीं होगी, किंतु प्रचार में गुणीजन ऐसा करते आ रहे हैं और अपना भी मत है कि महाजनो येन गता सपन था। इस हेतु उपरोक्त स्वर संगति को ध्यान में रखना श्रेयस्कर है। इस स्वर संगति से इतनी सहायता अवश्य मिलती है कि जब उत्तरांग में म प ध कोमल नी प ध तार सा तार रे तार ग तार सा इत्यादि स्वर समूहों से झिंझोटी की अधिकता होने लगती है तो मपनी तार सा स्वर संगति द्वारा कुछ समय के लिए झिंझोटी से ध्यान हट जाता है। यूं सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर खंबावती राग में मपनी तार सा स्वर संगति के प्रयोग का शास्त्राधार नहीं मिलता है, क्योंकि झिंझोटी खमाज और मांड इन तीनों में से किसी भी राग में मपनी तार सा की चलन नहीं है। मेरे विचार से तो खंबावती राग में यह स्वर संगति खीर में कंकड़ ही दिखती है, अतः इसको त्यागना ही उचित है। परंतु पूरे उत्तर भारत के संगीतज्ञ बहुत समय से खंबावती में इस स्वर संगति का प्रयोग उदारतापूर्वक करते आ रहे हैं, तो केवल एकमात्र मेरा ही विरोध करना पागलपन ही समझा जाएगा। इसलिए दादा वाक्य प्रमाणकम को ध्यान में रखकर इसी विषय में मौन रहना ही उचित होगा। इस संबंध में सिर्फ इतना कहना है कि जब नी तार सा स्वर समूह का प्रयोग किया जाए तो उसके आगे तार रे तार ग तार सा स्वर समूह न जोड़कर ध तार सा तार रे तार ग तार सा स्वर समूह लेना चाहिए, अन्यथा तिलक कामोद राग सामने आएगा। इस हेतु मपनी तार सा स्वर समूह लेने के बाद झिंझोटी या खमाज के स्वरों में प्रवेश करना राग के हित में है। खंबावती के वादी संवादी स्वरों के संबंध में मतभेद दिखाई पड़ता है। कुछ विद्वान इसमें षड्ज पंचम वादी संवादी मानते हैं, कुछ मध्यम षड्ज वादी संवादी मानते हैं, तो कुछ अन्य गुणी गंधार व धैवत को वादी संवादी मानते हैं। मेरे विचार से अंतिम मत खंबावती के स्वरूप को देखते हुए अधिक उचित लगता है। षड्ज पंचम वादी संवादी होना तो कुछ अंश में ठीक ही लगता है, परंतु मध्यम षड्ज को वादी संवादी मानना तो बिल्कुल विवेकहीन है। मध्यम तो इस राग में न्यासहीन होने के साथ साथ दीर्घ रूप से भी नहीं लगता। हाँ, अल्प मात्रा में आरोह अवरोह में आवश्यक रूप से लगता अवश्य है। इस कारण अलंघन बहुत्व की कोटि में आता है, जो अनुवादी स्वर का लक्षण है। पृष्ठ संख्या 37। इस राग में झिंझोटी तथा खमाज अंग की अधिकता होने के कारण गंधार की प्रबलता होना स्वाभाविक है। मिश्र रागों का वादी स्वर निश्चित करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। थाट कौन सा है, रागांग क्या है, राग को गाने का समय क्या है, कौन कौन से राग मिश्रित हैं तथा मिश्रित रागों में मुख्य राग कौन सा है, इसके अतिरिक्त किसका प्रकार है, इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर वादी स्वर का निर्णय किया जाता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखने के उपरांत खंबावती राग का वादी स्वर गंधार ही निश्चित होता है, क्योंकि खमाज व झिंझोटी का मुख्य मिश्रण तथा प्रबल अंग खमाज थाट व प्रकार इन तथ्यों से खंबावती संबंधित है। इसके अतिरिक्त खंबावती का पूर्वांग उत्तरांग दोनों ही गंधार के आकर्षण से खिंचता रहता है, जैसा कि आलाप देखने से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसलिए गंधार को वादी मानना ही राग के हित में तथा न्याय संगत है। मिश्र एवं संकीर्ण रागों का संप्रकृत अधिकतर मिश्रित राग ही होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तीन चार रागों के मिलने से एक के बाद दूसरे की छाया आती रहती है तथा एक से दूसरे की छाया नष्ट होती रहती है। इसी कारण ऐसे राग गाते बजाते समय सतर्कता इस बात की होनी चाहिए कि जो जो राग मिले हुए हैं उनका प्रमाण से अधिक प्रयोग ना हो। मिश्रित राग कई प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ जय जयवंती गाते समय मुख्य रूप से देस गाकर उसमें गौड़ और बिलावल को मिलाया जाता है, अर्थात देश में ही थोड़ा थोड़ा गौड़ और बिलावल मिलाकर देश से एक भिन्न राग जय जयवंती राग की रचना हो जाती है। यह मिश्रित राग का एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार बसंत बहार का है। बसंत बहार में बसंत और बहार दोनों में दोनों रागों के स्वर आते हैं। इस प्रकार के मिश्रित रागों को जोड़ का राग कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों मिश्रित रागों का महत्व समान रूप से होता है। जोड़ के मिश्रित रागों के और कई प्रकार होते हैं, जैसे किसी में पूर्वांग और उत्तरांग में भिन्न भिन्न राग मिले होते हैं। जैसे अहिर भैरव को ही लीजिए, पूर्वांग में भैरव तथा उत्तरांग में काफी। इस प्रकार दोनों राग दोनों विपरीत भागों में बटे हुए हैं। इन रागों के लिए इतना बंधन है कि एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। जहां एक ओर बसंत बहार में पूरे सप्तक में दोनों राग एक साथ रहते हैं, वहां अहिर भैरव में दोनों रागों के लिए इतना बंधन है कि एक राग दूसरे राग के क्षेत्र में झांक तक नहीं सकता। कुछ मिश्रित राग ऐसे होते हैं जिसमें दो राग मिलाने के अतिरिक्त कुछ विशेष स्वर संगतियां मिला दी जाती हैं। उदाहरणार्थ मियां मल्हार में कानड़ा और शुद्ध मल्हार को मिलाकर सा मंद्र कोमलनी मंद्र कोमलनी मंद्र ध मंद्रनी मंद्रनी सा, यह विशेष स्वर समूह मिलाकर किसी संगीत मर्मज्ञ ने मियां मल्हार की रचना कर दी है। यह विशेष स्वर समूह किसी अन्य राग का नहीं है, वरन किसी महापुरुष के मस्तिष्क की निजी उपज है। ऐसे अनेक मिश्र तथा संकीर्ण रागों का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें भिन्न भिन्न नियम दिखाई पड़ते हैं। पृष्ठ संख्या 38। खंबावती राग में भी झिंझोटी, खमाज एवं मांड को मिश्रित कर ग म सा यह विशेष स्वर समूह मिलाकर राग को एक नवीन रूप दिया गया है। खंबावती में इन तीनों रागों का मिश्रण होने से इन तीनों रागों की छाया इस राग में पड़ना स्वाभाविक है, यथा ध कोमल नी प ध तारसा व सारे म प ध कोमल नी प ध तारसा। यह स्वर समूह लगाने से जब झिंझोटी की छाया अधिक होती है तब तारसा कोमल नी ध प ध म ग, खमाज अंग के इस स्वर समूह से झिंझोटी की छाया नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जब इन दो रागों की छाया अधिक पड़ने लगती है तो ध म प ग म मांड के इस वक्र स्वर समूह से झिंझोटी तथा खमाज का रंग जाता रहता है। इन तीनों ही रागों की छाया को दूर करने के लिए खंबावती का विशेष स्वर समूह ग म सा आलाप के बीच बीच में तथा अंत में अपना प्रभाव दिखाकर राग के स्वरूप को अन्य संप्रकृत रागों से दूर हटाकर अपना अलग अस्तित्व बनाए रखता है। खंबावती गाते बजाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसका विस्तार मंद्र सप्तक में नहीं करना चाहिए, जैसा कि सा मंद्र कोमलनी मंद्र ध मंद्र प मंद्र ध सा मंद्र कोमलनी मंद्र ध मंद्र प मंद्र म मंद्र प मंद्र ध सा इत्यादि, क्योंकि ऐसा करने से पूर्ण रूप से झिंझोटी का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा जो खंबावती के लिए अहितकर है। खंबावती गाते समय सारे म प ध तार सा स्वर समूह से दुर्गा, कोमल नी ध सा स्वर समूह से नारायणी तथा म प नी तार सा तार रे कोमल नी ध प म प ध तार सा स्वर समूह से सिंदूरा इत्यादि रागों का आभास होता है, परंतु शुद्ध गंधार के प्रयोग से इन सभी रागों की छाया दूर होती रहती है। इस प्रकार खंबावती अपनी विशेष स्वर संगतियों द्वारा अन्य सभी रागों से अपना एक अलग अस्तित्व बनाकर जन मन का रंजन करने में पूर्ण समर्थ है। पृष्ठ संख्या 39। स्वरों का प्रयोग तथा महत्व। षड्ज तो संपन्न स्वर है ही और सामान्य रूप में इसका प्रयोग होता है। ऋषभ का प्रयोग आरोह में अनाभ्यास अल्पत्व के रूप में होता है, क्योंकि केवल आरोह में रेमा प इस प्रकार प्रयोग होता है। न यह दीर्घ स्वर होता है और न ही इस पर न्यास किया जाता है। इतना अवश्य है कि आरोह में इस स्वर को कभी छोड़ते नहीं है। अवरोह में द्रुत तान लेते समय कभी कभी कुछ गुणिजन मगरेसा इस तरह सीधा प्रयोग कर लेते हैं। तार सप्तक में यह स्वर तार सा तार रे तार ग तार सा इस प्रकार झिंझोटी से कभी कभी प्रयोग कर लिया जाता है। कभी रेपा म ग इस प्रकार झिंझोटी की तरह ऋषभ पंचम की संगति में लगा हुआ दिखाई पड़ता है। अन्यथा अवरोह में आलाप करते समय इस स्वर को त्यागना ही राग के हित में है। गंधार स्वर का स्थान इस राग में बड़ा विचित्र है। यह खंबावती का वादी स्वर है, अर्थात आंशिक न्यास बहुत्व का स्थान है, परंतु इस स्वर पर केवल अवरोहात्मक न्यास करते हैं, वह भी सावधानी के साथ, अन्यथा झिंझोटी या खमाज होने का भय है। अवरोह में ध म प ग कोमल नी ध प ध म प ग तार सा कोमल नी ध नी प ध म प ग साढ़े म प ध कोमल नी ध प ध म प ग इस प्रकार पंचम की संगति में गंधार पर न्यास किया जाता है। कोमल नी ध प ध म ग स्वर समूह के द्वारा जब गंधार पर न्यास करते हैं तो खमाज और झिंझोटी से बचने के लिए ध म ग करते समय मध्यम से गंधार पर आते समय गंधार पर पंचम का कण लगा दिया जाता है। ध म प कड़युक्त ग इस प्रकार। पृष्ठ संख्या 40। कभी कभी विस्तार करते समय सा मंद्र कोवलनी मंद्र ध सा ग म सा। इस प्रकार आरोहात्मक दृष्टिकोण से भी गंधार का प्रयोग होता है, परंतु इस लगाव में इतना ध्यान रखना चाहिए कि सा ग म सा इस तरह षड्ज के साथ गंधार का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा करना हो तो षड्ज पर थोड़ा विश्राम करके इसके बाद ग म सा स्वर संगति का प्रयोग सा ग म सा इस भांति करना चाहिए। वादी स्वर के लिए राग में इस प्रकार का संकट शायद ही किसी अन्य राग में देखने को मिले। कुछ रागों में वादी स्वर पर न्यास केवल अवरोह में होता है, जैसे भटियार बसंत इत्यादि। इनमें अवरोह में न्यास स्वतंत्रता से करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राग ऐसे हैं जिनमें वादी स्वर पर न्यास नहीं होता, जैसे अल्हया बिलावल। इस राग में वादी स्वर धैवत पर न्यास नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से राग का स्वरूप विकृत होने लगता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस राग में वादी पर न्यास ही नहीं है, उसमें वादी स्वर पर न्यास के लिए कोई योजना ही नहीं बनानी होती, और जिन रागों में केवल अवरोह में ही वादी स्वर पर न्यास होता है, उनमें यह कृत्य स्वतंत्रता पूर्वक बिना बंधन के किया जा सकता है। परंतु खंबावती में वादी स्वर पर न्यास केवल अवरोह में ही होता है, और वह भी कई बंधनों को ध्यान में रखते हुए, अन्यथा राग हानि होने का भय है। यह पूर्वांग राग है, परंतु वादी स्वर पर आरोहात्मक न्यास नहीं है। यहाँ तक कि आरोह में गंधार का कोई महत्व ही नहीं है। अवरोह में भी इस स्वर पर अधिक देर तक न्यास करना राग के लिए अहितकर है। दो चार स्वर समूह लेकर गंधार पर न्यास करने के बाद ग म सा जो राग का मुख्य स्वर है उसको लेने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो झिंझोटी व खमाज सामने आते हैं। वादी स्वर पर न्यास या वादी स्वर का जो दीर्घत्व गुण है वह खंबावती में वादी स्वर को प्राप्त नहीं है। वादी स्वर के आगे पीछे के स्वर ऋषभ व मध्यम भी इस राग में न्यास व दीर्घ रहित हैं। हाँ, पंचम पर पूर्ण न्यास होता है। गंधार भी उसी के सहारे ध म प ग या ध म प कड़युक्त ग इस प्रकार पंचम की संगति एवं सहायता से ही अपनी वादी स्वर होने की प्रतिष्ठा बनाए रखता है। मध्यम खंबावती में अनुवादी के रूप में कार्य करता है। आरोह में रेमा प की चलन में यह हमेशा प्रयोग होता है। कभी रे प म ग स्वर संगति में इसका लंघन दिखाई पड़ता है, किंतु यह राग में आवश्यक स्वर संगति नहीं है। इसलिए आरोह में मध्यम का अलंघन बहुत्व का स्थान ही माना जाएगा। अवरोह में यह स्वर पंचम व गंधार के बीच में कैद रहता है, यथा ध म प ग अथवा ध म प कड़युक्त ग। कभी भी आलाप में ध प म ग या ध म ग इस प्रकार मध्यम का सीधा प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, द्रुततान में सीधा प्रयोग कर लेते हैं। ध म प ग के बाद म सा मध्यम षड्ज की संगति राग का मुख्य अंग है। इस प्रकार अवरोह में वक्र होते हुए षड्ज से मिलने के लिए व आलाप को पूर्ण करने के लिए इस स्वर को बार बार आगे आना पड़ता है। खंबावती के पूरे विस्तार में मध्यम के लगाव को देखते हुए इस स्वर का आरोह एवं अवरोह में अलंघन बहुत्व का स्थान ही दृष्टिगोचर होता है। पृष्ठ संख्या 41। पंचम स्वर प्रस्तुत राग में पूर्ण न्यास का स्वर है। इस स्वर पर आरोह अवरोह दोनों में न्यास होता है, यथा रेमा प ध म प कड़युक्त ग म सा, मंद्र कोमल नी मंद्र ध सा, रेमा प रेमा प ध कोमल नी ध प म प ध तार सा कोमल नी ध प इत्यादि। ध म स्वर संगति में पंचम का बार बार लंघन दिखता है, परंतु ध म के बाद फिर पंचम प ग स्वर संगति सामने आ जाता है। धैवत का स्थान खंबावती में संवादी स्वर का है। यह आरोह तथा अवरोह दोनों ही में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है, यथा मपध तार सा, तार रे तार सा, कोमलनी कोमलनी, प कड़युक्त ध प। हाँ, मपनी तार सा इस प्रकार शुद्ध निषाद के प्रयोग में धैवत का लंघन अवश्य हो जाता है, परंतु नी तारसा स्वरों के बाद धैवत पुनः ध तारसा तार रे तारसा व तार रे तारसा कोमल नी ध तारसा इस तरह आगे आकर तथा तारसा कोमल नी ध ध तारसा तार रे तारसा कोमल नी ध तारसा तार रे तार मा तार ग तारसा तार रे तार सा कोमल नी ध। इस प्रकार धैवत न्यास युक्त होकर राग में केवल अवरोहात्मक न्यास बहुत्व का स्थान स्पष्ट कर देता है। कोमल निषाद का इस राग में अभ्यास बहुत्व का स्थान रहता है, क्योंकि यह स्वर केवल अवरोह में होते हुए भी दीर्घ रहता है तथा बारंबार इसकी पुनरावृत्ति होती है। म प ध कोमलनी कोमलनी ध, तार सा कोमलनी कोमलनी ध, कोमलनी प ध तार सा इत्यादि। शुद्ध निषाद के अनावश्यक प्रयोग की चर्चा तो पहले ही की जा चुकी है, फिर भी प्रसंगवश कुछ कहना ही है। यह स्वर राग में म प नी सा तार सा इस चलन में लगता है, इसके अतिरिक्त कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता। पृष्ठ संख्या 42। अंतरे के उठाव में अधिकांश गुणिजन इसका प्रयोग करते हैं। यदि प ध तार सा चलन के द्वारा अंतरे का उठाव किया जाए तो राग में किसी दृष्टि से भी किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होगा, परंतु प्रचार को दृष्टि में रखने के बाद इस स्वर का भी उत्तरांग में व्यावहारिक स्वर कहकर प्रयोग करना तथा राग में अत्यंत अल्प समझना विवेकपूर्ण है। आरोह सारे म प ध कोमल नी प ध तार सा, अवरोह तार सा कोमल नी ध प ध म प ग म सा। मुख्य स्वर समूह रेमा प ध कोमल नी ध प ध म प ग म सा।